नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को भी स्वीकृति दी। केंद्र ने डेयरी विकास और पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों के आवंटन में वृद्धि की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार अगले 2 वर्षों में 10,000 नए जन औषधि केंद्र खोलेगी। सरकार ने चंडीगढ़ में पंजाब के किसानों के साथ बैठक की। अगली बैठक 4 मई को होगी। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत सहित 4 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आज एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
1,500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2,000 रुपीस उसमें कोई ट्रांजेक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी।
सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र की वार्षिक क्षमता 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की होगी। उन्होंने परियोजना से देश में घरेलू यूरिया उत्पादन में वृद्धि की बात कही और ये यूरिया की बढ़ती मांग को भी पूरा करेगी।
नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी।
सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी स्वीकृति दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा जिससे कि किसानों को अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके।
मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है। इससे डेयरी क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में JNPA बंदरगाह से चौक तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना JNPA पोर्ट और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए बनाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश भर में 15,000 जनऔषधि केंद्र हैं और सरकार ने अगले 2 वर्ष में 10,000 नए केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन केंद्रों में बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध होने के कारण अब तक रोगियों के 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई स्वास्थ्य नीति एक व्यापक नीति है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का विषय उठाने पर आपत्ति व्यक्त की।
सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं, उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो मान्य सुप्रीम कोर्ट के और मान्य हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है।
सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने श्री गोखले को भाजपा के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में श्री रिजिजू ने कहा कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देशभर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले जोखिमों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि केंद्र की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सरकार ने 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि चंद्रयान 4 को 2 प्रक्षेपण यानों के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा।
चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा।
श्री सिंह ने कहा कि इस साल के अंत तक एक महिला रोबोट के साथ गगनयान की परीक्षण उड़ान शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एआई दुनिया में बड़ा बदलाव ला रही है और पत्रकारिता सहित कई क्षेत्रों में नए अवसर तथा नई चुनौतियां पैदा कर रही है। नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उन्होंने डीप फेक और एआई के दुरुपयोग के खतरे के बारे में सभी नागरिकों को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से भेंट की। उन्होंने श्री गेट्स के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के किसान और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता आज चंडीगढ़ में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है और वो उनके कल्याण के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित नीतिगत हस्तक्षेप कर रही है।
बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है, चर्चा जारी रहेगी, अगली बैठक 4 मई को होगी।
3 घंटे से अधिक चली चर्चा में किसानों की मांगों के विभिन्न कानूनी, आर्थिक और अन्य आयामों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज जम्मू में 12 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े सदस्यों के घरों में की गई। इस दौरान आतंकियों की कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। इन संगठनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों की भी तलाशी ली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर हिंसा के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में श्री फडणवीस ने कहा कि जांच जारी है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने के लिए धार्मिक ग्रंथ को जलाने की अफवाह जानबूझकर फैलाई गई। विदेश मंत्रालय ने आज गजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने सभी बंधकों की रिहाई पर बल दिया और कहा कि गजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखी जानी चाहिए। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर तथा निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुरबुनोव स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर आज सवेरे वापस आ गए। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। इसके साथ ही सुनीता और बुच की 9 महीने की कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। दोनों पिछले साल जून से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। निक और अलेक्जेंडर को सितंबर 2024 में ड्रैगन अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए नासा की पूरी टीम को बधाई दी है। उधर गुजरात के महसाणा जिले के झुलासन गांव के निवासी और सुनीता विलियम्स के परिवार के सदस्य आज उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी का जश्न मना रहे हैं। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव झुलासन में उनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने यज्ञ और प्रार्थना सभाओं सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 148 अंक बढ़कर 75,449 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक बढ़कर 22,908 दर्ज हुआ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए डिजीलॉकर के साथ भागीदारी की है। ये पहल निवेशकों को डिजीलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल एंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहित करने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस पहल के माध्यम से सेबी और डिजीलॉकर निवेशक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मेजर बॉब खाथिंग स्मारक समारोह के 5वें संस्करण में मेजर खाथिंग को भारत का महान सपूत बताया।
चाहे युद्ध के मैदान में अपना शौर्य दिखाना हो या डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना हो, मेजर बॉब खाथिंग ने अपने कार्यों से भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह मेजर खाथिंग के ही डिप्लोमेटिक स्किल का परिणाम था जिसने तवांग को भारत का अटूट हिस्सा बनाया। न सिर्फ तवांग बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंटीग्रेट, डेवलप और रीबिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और अब खेल खबरें। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के श्रीकांत और शंकर सुब्रमण्यम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय और ईशा रानी बरुआ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पोलैंड को 104 के मुकाबले 15 से हरा दिया। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला हांगकांग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 59-15 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को भी स्वीकृति दी। केंद्र ने डेयरी विकास और पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों के आवंटन में वृद्धि की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा सरकार अगले 2 वर्षों में 10,000 नए जनऔषधि केंद्र खोलेगी। सरकार ने चंडीगढ़ में पंजाब के किसानों के साथ बैठक की। अगली बैठक 4 मई को होगी। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत सहित 4 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।